और बिल आखिर एक और तरीका इख्तियार किया, बहस और कट हुज्जतियों का, आके बहसें शुरू हो जाते थे, ये बताएं ना ये कैसे है, अच्छा जी फिर क्या गौसे आजम कुछ नहीं है, अच्छा जी वो कज़ा उमरी क्यों नहीं जी, अच्छा जी ये वो, यानी इस किस्म की बातें करते थे कि आपकी बातें हमने कभी पहले नहीं सुनी, अच्छा क्या फिर बाकी मस्जिद वाले आलिम नहीं है, अच्छा जी वो तो ये मनाते हैं आप तो इससे रोकते हैं, तो मैंने कहा हम तो कभी नहीं रोकते, कुरान जो है वो सुना रहे हैं, हदीस जो है आके हुज्जतें करते। मसलन एक मौके पे एक हुज्जत की थी, आप कुरान में सूरह यासीन में पढ़ेंगे कि एक शख्स था तो वो सूखी पुरानी कब्र की एक हड्डी पुरानी निकाल के ले आया, कहने लगा है मोहम्मद बताओ, मैं युहयिल्इज़ाम वहिय्या रमीम, बताओ ये पुरानी गली सड़ी हड्डी को कौन जिंदा करेगा, अगली आयत में उसका जवाब है कुल युहयिल्लज़ी अंशाहा बिही अव्वल मर्रा, ए नबी इनको बता दें इसको वही जिंदा करेगा जिसने इसको पहली दफा जिंदा किया, चलो आज हड्डी तो है ना चाहे सूखी सड़ी है, कल तो ये पानी था। इस तरह की आयतें आपको कुरान में जहां दिखें तो समझ लें कि वहां उन लोगों की बहसों का जवाब दिया गया। कभी कहते लो जी मर के मट्टी हुए कब जिंदा होंगे, हमारे बाप दादा कभी जिंदा हुए कि नहीं हुए, जिस तरह से इस तरह की बातें, यानी ऐसे हालात पैदा करता रहा। इसके ऊपर एक हदीस है मुस्नद अहमद की 7160, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, कहते हैं कि एक मरतबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, अचानक इनकी नज़र आसमान पर पड़ी, उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता उतर रहा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अब इसको आप गौर से सुनिएगा, ये फरिश्ता जब से पैदा हुआ है इस वक्त से लेकर अब तक इस वक्त से पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा, जब वो नीचे उतर कर आया तो कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके रब ने आपकी तरफ ये पैगाम देकर भेजा है। प्रोटोकॉल देखिए कितना है, यानी पहली दफ़ा वो फरिश्ता उतरा और आके अल्लाह के नबी को मैसेज देता है कि अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ पैगाम भी दिया, क्या कि वो आपको बादशाह बनाकर नबूवत अता कर दे या अपना बंदा बनाकर रिसालत अता करे, यानी चूज़ करें, क्योंकि ये भी बड़ी कट हुज्जती थी कि अल्लाह के नबी गरीब क्यों हैं, इनका घर क्यों टूटा हुआ, इनके बच्चे क्यों नहीं बचते, इनके बच्चे क्यों नहीं हैं, बेटे क्यों नहीं हैं, तो अल्लाह के नबी ने पूछवाया कि नबी बनना चाहते हो कि बादशाह, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने तवाज़ु इख्तियार कीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं बल्कि मुझे बंदा बनाकर रिसालत अता कर दे। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी को दीन की तरफ आता देख कर फिर कोई ऑप्शन आए, ये कोर्स करना है या आपको 50,000 करोन महीने की पे जॉब लेनी है, ये एक मुकाबला, ऐसे ही लग रहा है ना कि क्या चूज़ करना है, बोलिए आपको दौलत चाहिए या दीन चाहिए या आपको कोई और ओहदा चाहिए, हम आपको सदारत वजारत दे देते हैं खुदा के लिए कोर्स छोड़ दें, हम उस वक्त क्या चूज़ करते हैं, हम कहते हैं अगले साल कोर्स कर लेंगे, जिन्होंने पिछले साल कहा था अभी तक मैंने नहीं देखा उनको आते हुए, हर दिन तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो कभी आपके भी सामने ये चीज़ें आएंगी तो फिर आपने इन बातों को याद रखना है कि अल्लाह के नबी को भी तो ये चॉइसेस दी गई थी लेकिन आपने उस वक्त इस नबूवत और रिसालत को माना, और उस वक्त देखिए रिसालत में क्या था आपके लिए, कुछ नहीं पता कल क्या होना है, ये भी एक नुक्ता गौर करने का है। मक्का तो कहीं फतह हुआ, हिजरत गलबा तो मिला कोई 10 साल 13 साल के बाद, उस वक्त तो पत्थर थे, फिर भी क्यों आपने इसको चूज किया, क्योंकि दीन का काम करने से एक खुशी और एक सुकून और इत्मीनान और अपने जीने का एक मकसद जो दिखता है बंदा वो नहीं छोड़ सकता। कई साथ हैं मजबूरियों में जाते हैं इधर उधर लेकिन रोते हैं, दिल उनका इधर ही अटका रहता है, मजबूर हैं क्या करें, परेशानी है वक्ती है, अभी नहीं सुबह नहीं शाम को, सुबह शाम नहीं वीकेंड करके वो गिल्ट को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अल्लाह उनको फिर ले आता है। तो याद रखे कि इस किताब की कीमत पर जो चीज़ भी मिलेगी ना, दौलत मिल सकती है, ओहदे मिल सकते हैं, जॉब मिल सकती है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगी, और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई कभी भी इससे महरूम हो जाए। तो बहरहाल आप इस बुक में पढ़ सकते हैं, इसमें कई आयात ऐसी मौजूद हैं कि जो ऐसे मौके पे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती रहीं और आपको तसल्लियाँ मिलती गईं। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको आप ख़ुद बुक में पढ़िएगा, मैंने आपको सिर्फ़ एक खुलासा दे दिया इसका कि आपके लिए किस तरह से बहसें और हुज्जतें इन्होंने इन लोगों ने की, और कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते तो अल्लाह ताला उनको तसल्लियाँ देता रहा। पेज नंबर 66 से लेकर आप लोग तकरीबन अगले 3-4 सफ़े पढ़ लीजिए, उसमें आपको कुरान के सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि उस दौर में जो आयतें नाजिल हो रही थी उसका मकसद लोगों को प्रवोक करना था। अफ़नजलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, क्या मतलब है कि जुर्म करने वाले गलत काम करने वालों को अल्लाह मुसलमानों जैसा कर देगा, क्या हो गया तुम्हें, कैसे हुक्म देते हो? इन तसल्लियाँ दिए कि उठो काम करो, कोर्स करने वाला और ना करने वाला क्या बराबर होंगे? दीन की खिदमत करने और ना करने वाला क्या बराबर होगा? सारी आयतें इस किस्म की थी और ख़ास तौर पे लोगों को इसमें धमकियां भी दी जा रही थी कि तुम अल्लाह के मुकाबले में बड़े बनते हो, जब अल्लाह पकड़ना चाहेगा तो तुम्हें कैसे पकड़ लेगा। एक और बड़ी हुज्जतबाजी करते थे कि ये रसूल खाता पीता क्यों है, बाज़ारों में जाता है, कारोबार करता है, इसके घर में यानी वो सारे हालात है जो कि एक आम बशर के घर में होते हैं, तो इस पे सूरह फुरकान की आयतें आप पढ़ेंगे, सूरह काफ़ की आयतें हैं आपके रेफरेंस में लिखी हुई हैं बुक में, आप लोग ख़ुद इसको पढ़ के देखिए कि उनका ये उज़र भी अल्लाह ताला ने दूर किया कि ये नबी। एक और बहुत बड़ा हुज्जत थी अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ कि ये इंसान क्यों, फरिश्ते क्यों नहीं, तो उस पर पिछले अंबिया कराम के इंसान होने की बात कर दी गई। फिर इसी तरह एक और चीज़ थी जिस पे अल्लाह के नबी सल्लम के साथ थी, और वो क्या थी कि मोजज़े मांगते थे, करामतें दिखाओ, कुछ करो, कुछ दिखाओ, ओहद पहाड़ को सोने का कर दो, ऐसी ऐसी बातें पेश करवाते थे अल्लाह के नबी सल्लम से कि जो जिसकी कोई तुक ही नहीं थी। कभी कहते अच्छा जी मक्का और ताइफ के किसी बड़े आदमी को नबी क्यों नहीं बनाया गया, ये बेचारा यतीम और इसको नबी बना दिया गया। कभी इस तरह की बातें करते कि अच्छा जी अगर ये नबी है तो हम नहीं मानते, फरिश्ता होता तो मान जाते। तो अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान आयत 87 और 8 को इधर पेश कर दिया कि देखो अगर फरिश्ते आते तो फिर इंसानी शक्ल में ही तो आने थे ना। तो बहरहाल आप ये पूरा टॉपिक जो था एंड तक पढ़िएगा पेज नंबर 82 पे, कि जिसमें आपको उन लोगों की ये बातें जो हैं वो दिखेंगी। और ख़ास तौर पे इसमें जो चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ देती थी ना, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी की जिस तालीम पर ये लोग परेशान होते थे, कहते थे हमारे बुज़ुर्गों को बुरा ना कहें, जिनकी कब्रों पे, जिनके स्थान और जिनके जो आस्ताने थे ना, वहाँ जाके ये दुआएं मांगते थे। यहाँ थोड़ी सी बात समझ लें तो फिर आप इंशाल्लाह यहाँ से कुछ 73 पेज से आगे पढ़िएगा तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। एक बहुत बड़ा अल्लाह के नबी पे इल्ज़ाम था और वो क्या था कि ये हमारे बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं। उनके बुज़ुर्ग कौन थे? लात, मनात, उज़्ज़ा, यऊक, यऊस, नसर। ये पुराने दौर के हज़रत नूह के दौर से ये बुत चल रहे थे। 300 के करीब बुत हरम के अंदर मौजूद थे इस वक्त भी। वो घर जिसको काबा को हज़रत इब्राहिम और इस्माइल ने अल्लाह के लिए बनाया था ना, उस घर के अंदर इन्होंने इतने बुत रख दिए थे। और जब कोई बात करता इसके खिलाफ, कहते देखा देखा ये हमारे बुज़ुर्गों की तौहीन करते हैं, औलिया कराम की बुराइयाँ करते हैं, इस तरह की बातों को बुनियाद बना के बहुत सारे लोगों को पीछे हटाते थे। तो आप इस पे आप देखिएगा ना, तो सूरत स्वाद की आयत नंबर 5 से 7 और इससे अगली कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने इस अकीदे का रद्द किया कि अल्लाह के बंदो बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग समझो। बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग है ठीक है, लेकिन बुज़ुर्ग को जब खुदाई में दावेदार या खुदाई के अंदर हिस्सेदार बनाओगे तो शिर्क है। देखिए इसको यूं समझें, सिर्फ बात समझाना चाहूँगी कि एक मर्द है, आप हथेली के अंदर आप लिखिए इस तरह देख लीजिए कि जैसे एक मर्द है, एक औरत उसकी माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बीवी है और एक कोई और फूफो लगा लें मिसाल है। ये 5 औरतों से मोहब्बत करता है, हर एक का एक अलग मुकाम है ना। माँ से प्यार, उसका इजहार फ़र्क है ना, बीवी से प्यार मोहब्बत उसका इजहार फ़र्क है, इसी तरह बाकी रिश्तों की लिमिट्स हैं। अब ये मर्द अपनी माँ से मोहब्बत के इजहार में माँ से बीवी वाला कुछ तकाजा कर दे तो सही है? अस्तग़फिरुल्लाह, भी माँ को बीवी बनाते हो? या कोई बीवी को कह दे तू आज से मेरी माँ है? समझ आ गई है ना, हर एक एक मुकाम है। जो नेक लोग अल्लाह के हिक्म से अच्छे काम करते थे, करके गए, उनका मुकाम है, वो ऐसे ही थे जैसे आज के दौर के नेक लोग हैं, आज के दौर के आए मस्जिदों में काम करने वाले लोग हैं, अपने वक्त में खिदमत करते हैं। इन लोगों ने उनके मुकाम में कुछ समझने में गलती कर दी कि उनको मुसीबतें डालने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला और इस तरह की कुछ अपनी अल्लाह की चीज़ों में शरीकेकार समझ लिया कि शिर्क आ गया उसमें। बस इस पे जब अल्लाह के नबी बात करते थे तो सबसे ज़्यादा नाराज़ होते थे, कहता देखा हमने कहा था ना ये तुम्हें सहाबी और वहाबी बना देंगे, ये बुज़ुर्गों को नहीं मानते। क्या नहीं मानते? हम बुज़ुर्गों को नहीं मानते यानी खुदा नहीं मानते या खुदाई में शरीक नहीं मानते। और मुशरिकीन का जितना शिर्क था ना, सबसे बड़ा शिर्क शिर्क फिर दुआ था। इनकी कब्रों पर जाके दुआ मांगे तो कबूल होती है, इनकी आस्थानों पे दुआ, इनका नाम लेके, इनके वसीले और इनके तुफैल से दुआ मांगे तो कबूल होती है, इनके उर्स मनाए और वहाँ दुआ मांगे कबूल करते, ये सब उनके मिथ थे। जब इस पे अल्लाह के नबी बात करते थे ना, तो सबसे ज़्यादा मुशरिकीन को मौका मिलता था आपके ऊपर तनकीद का, देखा आप हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस पे पूरी सूरत अलनाम आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरत बनी इसराइल पढ़ेंगे, सूरत नहल पढ़ेंगे, सब दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल लोगों को यही चीज़ लगती थी कि लोग हमारे बुज़ुर्गों और हमारे बुतों और बड़ों को ना करें, तो ये आप इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि इस सारे हालात से निबड़ने का तरीका अल्लाह के नबी को क्या सिखाया कि आप सब्र कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अथॉरिटी नहीं है। तकवा इख्तियार कीजिए, अपने आप को अच्छी तरह से रखिए, इस तरह से काम कीजिए कि बस अपने काम से काम रखें, चिढ़ ना चढ़ाएं। यहाँ से आपको इस्लाम का मिजाज, बल्कि अगले हिस्से में अभी हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे हमें आज के दौर में कितनी गाइडलाइन मिलती है। खुद ही आप एल मुझे मार वाली कैफियत ना रखो, खुद ही सांप के बिल में अपनी उंगलियाँ ना दे दो कि भाई तुम हमें मारो और हम मरने को तैयार हैं, बल्कि सुकून लो, थोड़ा अच्छा काम करो, अच्छे तरीके से बात करो और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। इन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी ने एक दफ़ा अबू जहल को दावत दी, सुनाती हूँ आपको हदीस ताकि हमें भी तबलीग करना आ जाए कि अब इतने सख्त हालात हैं तो क्या फिर हम तबलीग ना करें। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि सबसे पहले मुझे रसूलुल्लाह के बारे में इस दिन मालूम हुआ जिस दिन मैं और अबू जहल बिन हशाम मक्का की किसी एक गली में चल रहे थे कि हमारी मुलाकात रसूल करीम से हो गई। आपने अबू जहल से फरमाया, अब सुनिए, अबू जहल दुश्मन है और आप क्या कह रहे हैं, ए अबुल हकम। ये अपने आप को क्या कहलाता था, हिकमत का बाप, हकम हुकम उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आओगे? क्या तुम ये चाहते हो कि हम गवाही दें कि तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया? तो हम गवाही देते हैं कि आपने वाकई तबलीग कर दी। ये कौन कह रहा है? अबू जहल कह रहा है, अल्लाह की कसम अगर मुझे ये इल्म भी हो जाए कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो हक है, तो भी मैं आपकी पैरवी नहीं करूंगा। पता है इसको, कह रहे आप सच्चे हैं, आपने पैगाम भी दे दिया है, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। अब ये मुगीरा से बात करता है वो अबू जहल, और इसने कहा, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ ये जो कुछ कहते हैं वो हक है। निजी महफिलों में अकेले में बैठ के कहते थे ये बंदा सच्चा है। लेकिन बनी कुसई ने कहा कि हमें हिजाबा का ओहदा हासिल है, यानी हज के उमूर के मतलब हमारी जिम्मेदारियां हैं जो शर्फ और इज्जत की बात थी, हमने कहा तस्लीम है। उन्होंने कहा कि इज्तमाही मुशावरत की नुमाइंदगी हमारे पास है, हमने कहा मान लिया। यानी यहाँ देखिए तासुब आ रहा है जमात का नाम अपने फिरके का, कि असल बात यह है कि मैं क्यों नहीं इस मोहम्मद को मानूंगा कि लोग क्या कहेंगे कि इसने दूसरी जमात के बंदे की बात मान ली। ये मुराद है, पूरा कहें तो मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कलम बर्दारी का ओहदा भी हमें हासिल है, हमने कहा मान लिया। उन्होंने कहा हमें हाजियों को पानी पिलाने का ओहदा हासिल, हमने कहा ठीक है। इसके बाद वो लोगों को खाने खिलाते थे तो हम भी खाने खिलाते थे। जब ये दोनों काफिले यानी गिरोह मुकाबले में बराबर हो गए, यानी कि दो, ये तकाबुल की बात कर रहा है, गिरोह की बात है कि ये शख्स चूंकि हमारे गिरोह से नहीं है तो हमारा तो भाई इस गिरोह से बड़ा मुकाबला रहता है, जो काम ये करते हैं हम भी करते हैं, हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। जब हर चीज़ में हम बराबर हो गए तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर नबी भी है। इस पर अबू जहल ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं मान के नहीं दूंगा, यानी बनी कुसई की सारी बातें तस्लीम है, मगर मैं इनके नबी को नहीं मानता। आपके लिए बस अभी इतनी बात काफ़ी है कि अबू जहल फ़िरका वारियत की वजह से मुसलमान नहीं हुआ। कहने लगा कि ये शख्स मेरे फ़िरके से चूके नहीं है, नहीं मानूंगा, अगर मैं मान गया तो ये मेरी बेइज्जती है कि मैंने दूसरी जमात के बंदे को मान लिया। तो यहाँ से हालात आपके सामने हैं, किस तरह से मुसलमानों को झंझोड़ा जा रहा था और इस तरह के हालात थे। हम इन सारी बातों पर अगर नज़र रखें तो हमें अपने लिए बहुत सारी अमली रहनुमाइयाँ मिल सकती हैं। और आपको इन सारी बातों को सुनते वक्त यकीनन एहसास हो रहा होगा कि मुसलमान उन दिनों में किन हालात में थे। कोई बात पूछिए, शेयर करें जो आपने सोची भी। जी नसीम जी, आप क्या सोच रहे हैं, आपको अपने लिए क्या मिला? हर बात जो हमने भी सुनी है ना, इसके बाद अगर आप ख़ुद से एक सवाल पूछ लें कि अगर नबी सल्लम की जगह मैं होती तो क्या करती, या मैं होता तो क्या करता, और वल्लाही हम तो इससे बहुत पहले ही हार मान के आ जाते हैं। हम तो किसी के माथे पे एक बल नहीं देख सकते, कहाँ हम उसकी बात सुन के मान जाएं। जी आप सिस्टर।
जो पहले आपने कोर्स पे आना चाहिए, तो ये सोच के मैं आप जैसे बच्चों को इधर लेकर आती हूँ तकरीबन 4 दिन हफ्ते में, मगर ऐसा फील होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं हो जाता बच्चों के लिए, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो अगर हम लोग ट्यूशन पे जाते हैं तो अक्सर बच्चे मतलब कि बाद में स्कूल टाइम के बाद जैसे खेलने में जाते हैं, फिर बास्केट और फिर खेलते में जाते हैं, तो वहाँ पे तो जो बच्चों के ऊपर उनके लिए तो वो टाइम टेबल है ना, वो फ्री तब भी नहीं होते, तो मैंने बजाय कि उन चीज़ों को अगर लेकर के जाए, मैंने ये अगर लेकर दिया तो मतलब ज़्यादातर टीचर भी इस बात पर कहते हैं
जी बिल्कुल।
तो बहुत ज़्यादा।
यानी जब दीन के लिए बच्चों को 4 दिन लेके आए तो लोग इनको कहते हैं कि टू मच है, और स्कूलों में कहते हैं कि इनको बाद में भी रखें। कल की बात किसी और सिस्टर ने भी शेयर की, कल अल्हम्दुलिल्लाह इधर शाम का कोर्स शुरू हुआ है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, और शहर वालों को पता है कि नहीं पता, हमें इसका नहीं अंदाज़ा। लेकिन आप देखिए कि मैं कल वो बच्ची को अपनी लेके ही खुद भी आई, तो कह रही कि ज़ाहिर है कि मियाँ के साथ आई और मियाँ छोड़ने भी आए, लेने भी आएंगे, तो कहने लगी कि मेरे मियाँ ने मुझे बस इतना सा आते हुए कहा कि क्या ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा, हम हफ्ते में 3 दिन बच्ची को लाएंगे, तो कोई बात नहीं, उधर हमारे घर में भी तो क्लास शुरू होनी है, तो वहाँ तो कहती कि मैंने वहीं रुक के अपने मियाँ से कहा बात सुने, मतलब तो उसने अपने अंदाज से बात मुझे बताई कि आप मैं आई हूँ तो आपने मुझे कैसा पाया, तो बताए मैं वही हूँ जो पहले थी, तो आप सोचिए अगर हमारी बच्ची इधर आके इतना सीखेगी तो क्या ये वही होगी। तो कहती मेरी बात सुन के मियाँ कहते तुमने तो मुझे लाजवाब ही कर दिया। तो अब कल वो बच्चियाँ यहाँ पढ़ के गई हैं, बाद में इतनी वो खुश, मुझे फीडबैक भी भेजा कि बच्चियाँ खुश आई हैं और वो मुतमईन हैं और उनको इतना अच्छा लगा। इस शहर में जितनी सिर्फ पाकिस्तानी घरों की बच्चियाँ ना, मेरा ख्याल है कि उसका 10% भी आए ना तो हमारा पूरा स्कूल भर जाए, और ज़रूरत कितनों को है, चीखते कितने हैं सारे कुछ करो कराओ, जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो कितने लोग आते हैं। कुछ लोगों के कहने पे हमने ये कोर्स शुरू किया शाम का, बस उनका इतना ही नसीब था कि उन्होंने कह दिया शुरू करें हम आएंगे, कोई नहीं आए, नए आ जाएंगे बहुत सारे, जिसको अल्लाह लाएगा लाएगा। तो जब कोई नेमत मिलती है ना तो हम सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो ये ना शुक्री की बात होती है। जी कोई और, इधर पीछे अम्मा जी थी। जी
जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन छोटा होता है, तो फिर टीचर उन्हें फील कराते हैं कि उनसे ज़्यादा वजन है ना, तो अपनी मामा से, लेकिन वो अपने आप को सख्त करके अलग करने लग जाते हैं, तो इस तरह बच्चों को क्या समझाना है?
बस बच्चों को देखें कि कभी भी कोई भी चीज़ उनके ऊपर इम्पोज नहीं करें, उनको अच्छे तरीके से बताएं लें, जिसके बाद वो इंशाल्लाह ताला उस चीज़ को बहुत ही यानी समझ लगेंगे। बच्चों की अक्ल छोटी होती है तो उनको बड़ी बड़ी बातें ना करें, उनको ये कहना कि बेटा खाना भी तो रोज़ खाते हैं ना, फिर चलो ऐसा करते हैं एक दिन खाना भी नहीं खाते, सोते भी तो रोज़ ही है ना, अच्छे चीज़ें भी तो लेते हैं ना, तो अच्छी चीज़ के साथ टैली करके दे दें उनको। ठीक है जी, और कोई बात, आप क्या सोच रहे हैं जी? क्योंकि अगला टॉपिक बहुत दुखी करने वाला है, और अभी यानी यकीन करें कि मैं जब ये चीज़ें पढ़ती पढ़ाती हूँ तो फिर सारा दिन उसका दिल पे असर रहता है, और मैं अपने ऊपर लेके सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमान कितनी जल्दी पीछे पड़ जाते हैं और अपने दीन को छोड़ देते हैं। अब आपको ये तो नहीं लग रहा होगा कि मेरे पे बड़ी मुश्किल हैं कोर्स के लिए, यकीन करें सीरत पढ़ने का एक और बहुत फ़ायदा होता है कि अपने गम हल्के लगते हैं। जी फरहाना बजी, आप क्या सोच रहे हैं?
करते रहे, जो भी बात शक और शकूक की बात हुई है वो यही सबसे बड़ी बात है कि दिल में शक आ जाए ना तो बंदा कहीं जा नहीं रहता, तो उसके लिए यही है कि अपने दिलों से शक निकाल के सिर्फ यही दुआ करें कि अल्लाह जी हम तेरी राह में खड़े हैं, वो हमारे का होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देख ले, सीरत को देख ले, और बस अपने आप को खड़ा रखे तो अल्लाह ताला खुद ही हाथ पकड़
बिल्कुल। शक तो फिर ऐसे नेकियों को खा जाता है कि बंदा बिल्कुल रोगी हो जाता है। जी अम्मा जी तुसी कुछ कहो।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੇਟੀਓ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਦੁਆ ਵੀ
ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਦਿਲ ਖੁਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ।